नमस्कार भारत, तारीख 17 फरवरी दिन रविवार, मैं हूँ मानसी दास। पुलवामा हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में तनाव बढ़ा।
जम्मू के मुसलमानों को
तावुज़ दो, तावुज़ दो।
एक बात याद रखिए, यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि 2008 को रिपीट किया जा रहा है।
पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर भारत ने लगाया 200% आयात शुल्क।
हम पाकिस्तान से मुख्यतः सीमेंट और फलों का आयात करते हैं, और अगर इनका आयात कम भी हो जाए तो देश को न पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ेगा, न हमको कोई फर्क पड़ेगा।
8 दिन बाद खत्म हुआ राजस्थान का गुर्जर आंदोलन।
हमको 5% आरक्षण मिल गया है, जहाँ जहाँ जाम लगे रहे राजस्थान में तुरंत प्रभाव से हटा दिए जाए।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमले के बाद जम्मू क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। जम्मू में शुक्रवार को बुलाए गए बंद के दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गए और दर्जनों वाहनों को आग लगा दी गई। भारत के अलग अलग राज्यों में रह रहे कश्मीरी मूल के लोगों और छात्रों ने भी मदद की अपील की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कश्मीरी मूल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वहीं देशभर में हमले में मारे गए जवानों का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। तिरंगे में लिपटे शवों को जब अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राहत सामग्री से लदे अमरीकी सैन्य विमान वेनेजुएला की सीमा पर स्थित कोलंबिया के कुकुटा शहर पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहां वेनेजुएला के लोगों में बांटने के लिए दवाइयां और खाद्य सामग्री का भंडारण किया जा रहा है। काराकास में एक रैली को संबोधित करते हुए वेनेजुएला के विपक्ष के नेता ख्वान गोइदो ने कहा है कि हजारों स्वयंसेवक इस सामग्री को अगले शनिवार को देश में लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने देश भर के लोगों से बड़ी तादाद में प्रदर्शन करके सेना पर इस सामग्री को देश में आने देने के लिए दबाव बनाने की अपील भी की। गोइदो ने कहा,
Es que no solamente va a ser, por supuesto, en la frontera donde va a estar el gran movimiento voluntario.
जाहिर तौर पर प्रदर्शनकारी अभियान सिर्फ सीमा पर ही नहीं चलेगा। 23 फरवरी को वेनेजुएला के सभी शहरों में राहत सामग्री को आने देने के लिए भी प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कहना है कि उनके देश में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है और ये सब अमरीका और कोलंबिया की सांठगांठ से युद्ध की तैयारी के लिए किया जा रहा है। उन्होंने राहत सामग्री को देश में आने से यह कहकर रोक दिया है कि इसके बहाने अमेरिका आक्रमण भी कर सकता है। नाइजीरिया में चुनाव आयोग के राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों को अंतिम समय में टालने का फैसला करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने देशवासियों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करने की अपील की है। कॉमनवेल्थ और अफ्रीकन यूनियन के प्रतिनिधियों ने माना है कि इस फैसले से आम लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने सभी से संयम बरतने की अपील की है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है और एक सप्ताह के लिए चुनाव टालने का फैसला प्रबंधन कारणों से लिया गया है। अब चुनाव प्रचार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं नाइजीरिया में सत्ताधारी प्रोग्रेसिव कांग्रेस और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक दूसरे पर चुनाव टलवाने के आरोप लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति माइक पेंस ने यूरोपीय नेताओं से ईरान परमाणु समझौते से अलग होने की अपील की है। म्यूनिख सुरक्षा परिषद के समक्ष दिए भाषण में पेंस ने कहा कि अमेरिका सबसे पहले का मतलब अमेरिका अकेले नहीं है। उन्होंने यूरोपीय देशों को भरोसा दिया कि सीरिया से अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद भी अमेरिका इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। माइक पेंस ने कहा,
The time has come for all of us to act.
समय आ गया है जब हम सब कार्रवाई करें। समय आ गया है कि हमारे यूरोपीय सहयोगी देश इस बर्बर क्रांतिकारी सरकार पर लगाए गए अमरीकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करना बंद करें। हमारे यूरोपीय सहयोगियों का हमारे साथ खड़े होने और ईरानी लोगों के साथ खड़े होने का वक्त भी आ गया है। वहीं जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने सवाल उठाया कि क्या ईरान को रोकने का सबसे बेहतर तरीका परमाणु समझौते से अलग होना ही है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये सीरिया से अमरीकी सैनिकों को बुलाने का सही समय है। मर्केल ने अमरीका से सहयोगी देशों की चिंताओं का समाधान करने की अपील भी की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले में 40 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की मौत के बाद राज्य के जम्मू प्रांत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद जम्मू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जम्मू में मौजूद कश्मीरी कर्मचारियों का आरोप है कि हमले के विरोध में प्रदर्शन करने वाली भीड़ ने उनके घरों के सामने प्रदर्शन कर उन्हें डराने की कोशिश की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कश्मीरी मुसलमानों की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से भी कश्मीरियों को डराने धमकाने की खबरें आ रही है। इस स्थिति से जम्मू और कश्मीर के बीच राजनीतिक तनाव अब बढ़ गया है। सुनिए श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
इस घातक हमले ने घाटी में एक सिक्योरिटी चैलेंज तो पैदा ही कर दिया, परंतु देशभर में इस हमले के विरुद्ध जो आक्रोश पाया जाता है, इसकी लहर राज्य के जम्मू क्षेत्र में भी तनाव भड़का रही है। जम्मू में कल व्यापारी संगठनों की कॉल पर बंद बुलाया गया था, जिसके बीच प्रदर्शनकारियों ने गुजरनगर, जानीपुर, शहीदी चौक और अन्य बस्तियों में हिंसक प्रदर्शन किए। पुलिस का कहना है कि उत्तेजित भीड़ ने 80 वाहनों को आग लगा दी, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। कल भी कर्फ्यू के बावजूद जम्मू के सरकारी निवासों में रहने वाले कश्मीरी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इन्हें डराया धमकाया जा रहा है।
पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन लगाने के वादे हुए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एड खत्म करके इसको दुनिया में अलग थलग करने की बातें की गई, लेकिन सारे के सारे जुमले साबित हुए। और जिस तरीके से आज प्रोत्साहन मिला है आतंकवादियों को, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंट्स को, इंटरनेशनल फोर्सेस को, एक बहुत बड़ा खतरा जो है न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के सिर के ऊपर मंडरा रहा है।
बहुत ही गलत किया गया है, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक ये चीजें, कब तक हमारे जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे, ये चीज हमारा देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।
इस परिस्थिति से निमटने के लिए प्रशासन ने जम्मू में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और कश्मीरियों को आश्वासन दिया है कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। परंतु पिछले दो दिन के घटनाक्रम के बाद कल दोपहर को घाटी में व्यापारियों ने हड़ताल की और लाल
जम्मू के मुसलमानों को
एक बात याद रखिए, यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि 2008 को रिपीट किया जा रहा है, और हम अगर जम्मू वाले चाहते हैं कि वो 2008 की तरफ जाए तो हम जम्मू को बाइकॉट कर रहे हैं आज से।
अगर वो वाकई CRPF वालों से हमदर्दी रखते तो नसीर अहमद के घर जाकर ताजेती इजलास में वहाँ पर जाते, वहाँ उनकी फैमिली से सिंपैथी करते। लेकिन साथ ही जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिन्होंने हड़ताल की कॉल दी थी, पहले तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, लेकिन जो कल उनका बयान आया, जो उन्होंने कुमदल हारमनी की अपील की, वी वेलकम दैट अपील, वी अपील पीपल ऑफ जम्मू टू मेंटेन कुमदल हारमनी।
गौरतलब है कि 10 वर्ष पहले श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को सरकारी जमीन अलॉट करने के मामले पर जब घाटी में आंदोलन छिड़ा तो जम्मू में अमरनाथ संघर्ष समिति बनाई गई, जिसने जम्मू से कश्मीर की तरफ किसी तरह की भी सामग्री के ब्लॉकेड का आह्वान किया। वो भी चुनाव का साल था और आज भी कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं। इस बीच छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से कश्मीरी छात्रों और छात्राओं ने आरोप लगाया है कि इन्हें डराया धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राज्य छोड़कर निकल जाएं। कई छात्र वापस घर लौट रहे हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक की प्रशासन ने यह मामला केंद्र सरकार के साथ उठाया, जिसके बाद भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
श्रोताओं, अभी रिपोर्ट में आपने सुना कि 14 फरवरी को पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हुए हमले के विरोध में देश के कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं और कई जगहों पर कश्मीरी छात्रों से कहा जा रहा है कि वो राज्य छोड़कर वापस जाएं। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में हुआ, जहां कई कॉलेज के सामने प्रदर्शनकारी जुटे और कश्मीरी छात्रों को 24 घंटों के भीतर राज्य छोड़ने को कहा। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की देहरादून में मौजूद स्थानीय पत्रकार वर्षा सिंह से और उनसे पूछा कि क्या है पूरा मामला।
देखिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई। कुछ कश्मीरी बच्चों ने पोस्ट किए कि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें सेफ जगह पर जाना है। तो इसके बाद मेरी कुछ स्टूडेंट्स से बात हुई कश्मीर के, जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, और उनका कहना है कि कुछ जगहों पर कॉलेज में भी उनके और जहाँ पर वो किराए के कमरे में या हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ पर भी लोगों ने उन्हें धमकी दी और उन्हें 24 घंटे के अंदर वापस लौटने को कहा है। तो अभी ये स्टूडेंट्स बहुत सहमे हुए हैं और वो घर जाना चाहते हैं। मेरी नौशाद से बात हुई, नौशाद ने बताया कि वो 7-8 कश्मीरी बच्चे एक साथ एक कमरे में रह रहे हैं। उनके कमरे के बाहर अचानक से बहुत सारे लोग आ गए और दरवाजा खोलने की बात करने लगे।
जितने भी कश्मीरी है ना मैम, जितने भी कश्मीरी लड़के हैं लड़कियां, हमने बहुत थ्रेट है, वो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन वो सोच रहे हैं कि अब अगर कोई ऐसा वो गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऐसा ये आ जाए डिसीजन या ऐसा कि जो आपको मतलब जैसे कोई प्लान होगा वो इनके लिए रिजर्व करें कल के लिए, तो सभी कह रहे हैं कि हम घर ही जाएं।
कुछ कॉलेज कैंपस के बाहर जैसे अल्पाइन इंस्टीट्यूट है जिसके बाहर हंगामा हुआ और विरोध प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई। सुभारती मेडिकल कॉलेज है, BFIT कॉलेज है, मिनर्वा कॉलेज है, जहां पर अचानक कुछ लोग आ गए, हंगामा करने लगे, स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की मांग करने लगे। BFIT कॉलेज से तो कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे, उन्होंने बकायदा प्रबंधन से ये लिखवाया कि वो आगे से कभी किसी कश्मीरी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देंगे। तो एक तरह की केओस की स्थिति सब तरफ बन गई।
जी, आपकी किसी और छात्र से बात हुई?
मेरी ओवेसिस भट्ट से बात हुई, वो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और उनका कहना है कि जो भी घटना हुई पुलवामा में उसका असर जो है अब पूरे देश में जो कश्मीरी बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उन पर भी पड़ा है।
बच्चों को मतलब रेंट पे उनको किक आउट किया गया, तो ये नहीं होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। हाँ मतलब आखिर ये क्यों हो रहा है, और ये तो पॉलिटिकल इशू है, ये तो उनको छोड़ना चाहिए, बट हमने ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अब हम बस अमन चाहते हैं।
जो कश्मीरी बच्चे हैं ये कहना है और बाकी कश्मीरी बच्चों का भी कि वे अभी अपने घर सेफली पहुंचना चाहते हैं, वापस जम्मू कश्मीर लौटना चाहते हैं जब तक की स्थिति सामान्य ना हो जाए।
जी, पुलिस के आला अधिकारी इस बात पर क्या कुछ कह रहे हैं?
मेरी SSP निवेदिता कुकरेती जी से आज सुबह बात हुई, उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर ज्यादा इस तरह की भ्रामक खबरें आ गई हैं।
देयर इज नो दिस थिंग लाइक कि, और वो भी पीटा क्या इनके आपस में स्कफल जो होती है दो लोगों के बीच में कुछ कहने पर वो हुई थी।
जैसे कुछ फेसबुक पोस्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया, लोग मुझे धमकी दे रहे हैं।
नो नो नो, आई हैव स्पोकन टू दैट बॉय, उन लोगों से मेरी खुद की बात हुई है, हम लोग वहां जाके उनको मिलकर भी आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें लैंडलॉर्ड की जरूर बेवकूफी है, वो उनको ले आया अपने यहाँ जबरदस्ती वहां से निकाल के, अपने आप इमेजिन करके कि देयर मे बी गॉड नोज व्हाट मे हैपन, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
तो उनका कहना है कि जो भी बच्चे, जिस तरह की भी सुरक्षा दी जा सकती है, कुछ ऐसे इलाके हैं देहरादून में जहाँ पर ये बच्चे रेंट पर रहते हैं या इनके हॉस्टल हैं, तो वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स मुहैया कराई गई है ताकि इस तरह की घटना ना हो।
पूरी जानकारी दे रही थी वर्षा सिंह। इधर CRPF ने मुश्किल में फंसे कश्मीरी छात्रों और आम लोगों के लिए तुरंत मदद पहुंचा सकने के लिए CRPF मददगार नाम से एक हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया है। पुलवामा हमले के बाद अब भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाली वस्तुओं पर 200% आयात शुल्क लगा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बढ़ा हुआ आयात शुल्क फौरन लागू हो गया है। BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा ने अब से थोड़ी देर पहले बात की अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला से और उनसे पूछा कि दोनों देशों के व्यापार पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा।
डेफिनेटली व्यापार तो कम होगा ही, लेकिन मूल बात यह है कि हमारा जो व्यापार है वो किसी भी एसेंशियल गुड में नहीं है। हम पाकिस्तान से मुख्यतः सीमेंट और फलों का आयात करते हैं, और अगर इनका आयात कम भी हो जाए तो देश को न पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ेगा न हमको कोई फर्क पड़ेगा।
तो अगर इसको आर्थिक दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा बदलाव इससे नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक संदेश देने की जरूर कोशिश भारत सरकार ने की है।
मेरे ख्याल से ये पॉस्चरिंग ज्यादा है या दिखावा ज्यादा है, ये दिखावा ज्यादा है, चुनाव को देखते हुए चुनाव के लिए एक पॉइंट गेन करने का है, और इससे मेरे हिसाब से तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच जो व्यापार है, कुछ टमाटर कुछ प्याज, हम कुछ सब्जियां भेज देते हैं, वो कुछ अमरूद वगैरह भेज देते हैं, इनके आने और ना आने से न उनकी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है न मेरे को। अब राजनीतिक संकेत तो है लेकिन वो मेरे हिसाब से ढीला ही है, कोई कड़ा कदम नहीं कहा जा सकता।
तो क्यों आपको लगता है कि भारत फिर इतने हल्के कदम उठा रहा है? अगर ये मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्या है जिसका कोई असर ही ना हो?
सरकार को जरूरत कदम उठाने की इसलिए है क्योंकि जो चुनाव आ रहे हैं इसमें इनको कुछ न कुछ दिखाना है कि हमने क्या किया। ज्यादा कुछ कर सकते नहीं है क्योंकि युद्ध करना अमेरिका इन इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, इसलिए भारत उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। और ये जो 200% की भी ड्यूटी है ये भी कितना टिकेगी ये देखने का काम है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भारत में जो बाइंडिंग ड्यूटीज दे रखी है WTO में, देखिए डब्ल्यूटीओ में दो चीजें हैं, एक नॉट सबॉर्डिनेशन है और एक बाइंडिंग ड्यूटी है। तो आप जब डब्ल्यूटीओ में अपना लिख के दे देते हैं कि हमारी ये अधिकतम ये ड्यूटी होगी, तो फिर उससे अधिक लगाने में तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान डब्ल्यूटीओ में भी जा सकता है। तो इसलिए मेरे को लगता है ये केवल चुनाव के लिए पोस्चरिंग है और इसमें कुछ है नहीं।
अच्छा, इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, आपको क्या लगता है पहले कभी ऐसी नौबत आई कि दोनों देशों का व्यापार बिल्कुल ही बंद हो गया हो?
हो सकता है कि व्यापार पूरी तरह बंद हो जाए, हमारी बॉर्डर और सील हो जाए, लेकिन हो जाएंगे तो हो जाएंगे। बल्कि मेरे अनुसार इससे पाकिस्तान को जरूर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय अर्थव्यवस्था वैसे ही कमजोर है, पाकिस्तान हमसे बहुत छोटा देश है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान के लिए इस व्यापारिक प्रतिबंध का ज्यादा प्रभाव हो, लेकिन सामरिक दृष्टि से कोई मुझे ये महत्वपूर्ण दिखता नहीं है। भाई साहब
भरत झुनझुनवाला। और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं कि अखबारों की क्या सुर्खियां हैं। जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं दिलनवाज पाशा। दिलनवाज, बताएं अखबार आज क्या कह रहे हैं?
मानसी, आज दिल्ली से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर कल जो अंतिम संस्कार सैनिकों के किए गए उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। मेरे सामने आज का हिंदुस्तान है जिसमें शीर्षक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। एक ट्रक पर शहीद सैनिक के शव को ले जाया गया है और सैकड़ों मीटर लंबा तिरंगा है और हजारों लोगों का हुजूम। वहीं संडे नवभारत टाइम्स लिखता है, आंसू की हर बूंद का लेंगे हिसाब। और इस अखबार ने भी अपने पिता के शव पर बिलखती एक बेटी की तस्वीर प्रकाशित की है और उसके सर पर एक सैनिक का हाथ है और यह तस्वीर इसके अलावा आज संडे टाइम्स में भी प्रकाशित हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर भी यही तस्वीर है और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने भीतर के पन्नों पर देश भर में जो सैनिकों का अंतिम संस्कार किया गया उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। और कुछ जगह जो अंतिम संस्कार है उसमें 2 लाख के करीब लोग इकट्ठा हुए, तो एक विशाल जो जनसैलाब उमड़ा अंतिम संस्कारों में उसकी तस्वीरें आज के अखबारों में हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को जगह दी गई है जिसमें उन्होंने कहा कि सेना को खुली छूट दे दी गई है। कल सर्वदलीय बैठक भी हुई थी जिसमें जो है एकजुटता दिखाने की बात कही गई, इससे जुड़ी खबरें भी अलग अलग अखबारों पर के पहले पन्ने पर हैं। संडे टाइम्स की एक खबर का जिक्र करूंगा जिसके मुताबिक पाकिस्तान में, ये अखबार की खबर दावा करती है कि पाकिस्तान ने जो है LOC यानी नियंत्रण रेखा के उस पार जो कथित टेररिस्ट लॉन्च पैड हैं उनको हटा दिया है, आतंकवादियों को हटा दिया है सर्जिकल स्ट्राइक के डर से। और ऐसी ही खबरें और भी अखबारों में हैं पहले पन्ने पर। एक और खबर जो लगभग सभी अखबारों में है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इस भारत की सबसे तेज़ रफ्तार वाली एक्सप्रेस ट्रेन जब ये कल लौट रही थी तो रास्ते में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पशु आ जाने के कारण ट्रैक पर जो दुर्घटना हुई उससे ये ग्लिच आया था, लेकिन अब खबर यह है।
लेकिन हालांकि अधिकतर अखबारों का कहना है कि तकनीकी खराबी थी।
जी बिल्कुल, और अब खबर यह है कि ये ट्रेन ठीक हो गई है, अपने समय से चलेगी। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक खबर का जिक्र करूंगा जिसके मुताबिक कुछ भिखारी भीख मांगने के लिए 5,000 रुपए तक देकर जमानत ले रहे हैं, ये महाराष्ट्र के पुनर्वास केंद्रों से जुड़ी ही खबर है। इसके अलावा जनसत्ता ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, वैश्विक संस्था के सामने पाक को बेनकाब करना मकसद। और अब मेरे सामने है अमर उजाला, उसका संपादकीय पन्ना खुला है और मैं एक इस पर जो एक साइड में एक कॉलम छपा है उसकी कुछ कविता कुछ लाइनें पढ़ूंगा। कवि कुमार मनोज की पंक्तियां हैं, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नंगे नो निहालों की लंगोटियां चली गईं, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गईं। तो ये एक पत्र प्रकाशित किया है अखबार ने।
अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद दिलनवास। और अब जानते हैं पाकिस्तान में इस सप्ताह क्या कुछ चर्चा में रहा। उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा सुनते हैं दिनेश उप्रेती से, जिसे तैयार किया है BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में चरमपंथी हमला और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले बात पुलवामा में हुए हमले की। पाकिस्तान की धरती से सक्रिय चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा जिले में हुए चरमपंथी हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि पुलवामा के ही निवासी 20 साल के आदिल अहमद डार ने ये आत्मघाती हमला किया था। ये खबर पाकिस्तान के लगभग सभी उर्दू अखबारों में पहले पन्ने पर है। सारे अखबारों में एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत ने इस हमले के लिए बिना कारण पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। अखबार दुनिया ने सुर्खी लगाई है, भारत बेबुनियाद इल्जाम तराशी बंद करे। अखबार के अनुसार पाकिस्तान का साफ कहना है कि जैश ए मोहम्मद एक प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन है और पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। अखबार नवाए वक्त लिखता है कि पुलवामा हमले से मोदी ने बेजान चुनावी मुहिम में रंग भरने का मौका ढूंढ लिया। अखबार लिखता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारने के बाद बीजेपी को आम चुनाव में हार सामने नजर आ रही थी, ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक की गिदड़ भभकियों से बात न बनी तो पुलवामा में चरमपंथियों की कार्रवाई का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। अखबार के अनुसार राजनीतिक विश्लेषक इस बात से सहमत हैं कि ये भारत का पुराना हथकंडा है और जब भी चुनाव करीब हो तो तोपों का रुख पाकिस्तान की ओर मोड़ने का कोई न कोई बहाना तलाश लिया जाता है, लेकिन शायद भारत की जनता इस बार इस जाल में न फंसे। अखबार जंग ने आदिल अहमद डार कैसे चरमपंथी बना ये भी लिखा है। अखबार ने आदिल के माता पिता के हवाले से लिखा है कि 2016 में एक दिन जब आदिल अपने स्कूल के साथियों के साथ घर लौट रहा था तो भारतीय सेना ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ ज्यादती की। अखबार में आदिल के माता पिता के हवाले से लिखा है कि मार्च 2018 में आदिल घर से गायब हो गया था और जब 3 महीने तक उसका कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने समझ लिया था कि अब आदिल घर नहीं आएगा, उसकी मौत की खबर आएगी। जंग अखबार कहता है कि सीपेक आईएमएफ से संभावित समझौता और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान यात्रा ऐसे मामले हैं जो भारत के लिए बर्दाश्त करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे न केवल पाकिस्तान आर्थिक रूप से स्थिर होगा बल्कि उसकी सुरक्षा भी मजबूत होगी। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार MBS 2 दिनों की पाकिस्तान यात्रा पर रविवार को इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान उनका स्वागत करेंगे और फिर दोनों साथ प्रधानमंत्री निवास आएंगे। शाम को दोनों देशों के दरमियान कई समझौते होने वाले हैं।
उर्दू अखबारों की सुर्खियां सुना रहे थे दिनेश उप्रेती।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अब रुक करते हैं राजस्थान का, जहां सरकार से सुलह समझौते के बाद गुर्जर आंदोलन अब समाप्त हो गया है, लेकिन इस पूरे काम में 8 दिन लगे। इस दौरान रेल और सड़क मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। आंदोलन खत्म होने के बाद अब हालात कुछ सुधरने लगे हैं। सुनिए जयपुर से हमारे सहयोगी नारायण बारेट की रिपोर्ट।
कहीं रेल पटरियों पर सन्नाटा था और कहीं राजमार्ग पर जिंदगी ठहरी रही, क्योंकि आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समाज के लोग रास्ता रोक कर बैठ गए थे। वे अपने लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे थे। राज्य विधानसभा ने 4 दिन पहले ही आरक्षण के लिए कानून बना दिया था, लेकिन आंदोलनकारी इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि इसके पहले कानून बने लेकिन अदालत ने उस पर रोक लगा दी थी। सरकार को यह बेयकीनी तोड़ने में 2 दिन लग गए। कई दौर की बातचीत के बाद शनिवार को गुर्जर नेता समझौते पर रजामंद हो गए। सरकार ने अपने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को मौके पर भेजा और गुर्जर समाज को बातचीत के लिए तैयार किया। आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा, उनकी मांगे मान ली गई है।
सरकार ने यहाँ 48 घंटे के अंदर अंदर सर्वसम्मति से विधानसभा ने बिल पास किया और जैसी भी कल भी हमारी वार्ता चली 5 घंटे, जैसा आपने दूसरा एक सुरक्षा कवच मांगा था कि ये बिल आगे इसकी रक्षा की जाएगी सरकार द्वारा, वो भी कर दिया गया। आप जितना चाह रहे थे उससे ज्यादा करके लाया।
सरकार से बातचीत के बाद गुर्जर नेता किरोड़ सिंह बैंसला ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। वे अपने समाज से मुखातिब हुए और कुछ यूं घोषणा की,
हमको 5% आरक्षण मिल गया है और जहां कहीं भी थोड़ी बहुत लीगल बाधा आएगी उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर आश्वासन दिया है। सारी शर्तें आपके सामने आ गई है, 1-2 बिंदु रह गए हैं, उनकी आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। जहाँ जहाँ जाम लगे रहे राजस्थान में तुरंत प्रभाव से हटा दिए जाएं। और मैं आंदोलन को स्थगित करता हूँ।
इस आंदोलन के कारण 200 से ज्यादा रेलगाड़ियां प्रभावित हुई और सड़कों पर पहिए थमे रहे। अतीत में ये आंदोलन हिंसा देख चुका है और 70 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन ये सुकून की बात है कि इस मर्तबा खून का कोई कतरा नहीं गिरा। आंदोलन गोली की बजाय बोली से निपट गया। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
और अब आपको सुनाते हैं एक खास रिपोर्ट, कहानी झारखंड पुलिस में के एक ऐसे इंस्पेक्टर की जिन्होंने सैकड़ों बमों को डिफ्यूज किया है। कभी पटाखों वाले आलू बम से भी डरने वाले इस पुलिस अधिकारी को अब बड़े बमों से भी डर नहीं लगता। इन दिनों वे अपने साथी पुलिसकर्मियों को बम से बचने और उन्हें डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग देने में लगे हैं। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
डर के आगे तो जीत है, लेकिन सावधानी अगर बरता जाए, किसी भी चीज में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। अगर हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करेंगे, और मुझे यह पता है कि वो कैसे फट सकता है, तमाम सावधानी को अगर बरतेंगे तो डर को तो थोड़ा जीतना होगा, उसके बाद हमको तो आगे बढ़ना होगा। और आपकी पहली गलती ही आखिरी गलती होगा। आप अगर 100 प्रकार के सावधानियां बरते हैं और एक गलती किए तो दोबारा मौका नहीं देगा।
यह आवाज़ झारखंड पुलिस के इंस्पेक्टर असित कुमार मोदी की है। वे बता रहे थे कि बमों को डिफ्यूज करते वक्त होने वाली जरा सी चूक आपको गंभीर खतरे में डाल सकती है। 1994 बैच के इस पुलिस इंस्पेक्टर ने बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों में अपनी नौकरी के दौरान 800 से भी अधिक बमों को डिफ्यूज किया है। वे मुख्यमंत्री पदक पा चुके हैं और राज्य में उनकी पहचान बमों को डिफ्यूज करने वाले जांबाज अधिकारी के तौर पर है। लेकिन इस उपलब्धि को हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। उनके अध्यापक पिता कभी उन्हें पटाखे फोड़ने की भी इजाजत नहीं देते थे। असित मोदी ने BBC से कहा,
देखिए सर, ये तो मैं ट्रेनिंग करने गया था एडवांस ट्रेनिंग स्कूल पटना, और वहाँ पर पुलिस मेथोडोलॉजी की पढ़ाई होती है। तो चूंकि साइंस बैकग्राउंड होने के नाते मेरा क्यूरियोसिटी था, थाना में जब गया मैं था तो वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान भी देखते थे क्या कि बम थाना में रखा हुआ है। उस सीख करके आने के बाद हमको लगा क्या कि ये जो हमारे सिविल लाइन थाना में भी बम है, ये तो कभी किसी के साथ कुछ घटना भी घट सकता है। मैंने जिज्ञासा तो था ही, उसके अलावा जो सीखे थे उसको सोचे क्या कि कुछ इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो उस समय मेरा उम्र ऑलमोस्ट 29 साल हो गया।
तो क्या उन्हें डर नहीं लगता? वे कहते हैं कि मैंने हर केस को अपने पहले केस की तरह सतर्कता से निपटाया, इस कारण इतने बमों को डिफ्यूज करने के बावजूद कोई दुर्घटना नहीं हुई। वे कहते हैं कि अब हमारे पास एडवांस एप्स हैं, ऐसे में बमों को डिफ्यूज करने में सहूलियत होती है। हालांकि उनके हर मिशन के दौरान घर वालों की आंखें उनके वापस लौटने का इंतजार करती हैं।
से तो बोल ही देते हैं कि कहीं जाना है अभियान में, तो थोड़ा सा तो ये रहता है, डर लगता है, मगर ये है कि भगवान के आशीर्वाद से आज तक ऐसा कुछ ये नहीं हुआ है और हमको उनके ऊपर विश्वास है कि ये आएंगे।
DGP DK Pandey ने उन्हें असाधारण और वीर पुलिस अधिकारी बताया है। उन्होंने कहा कि 800 से भी अधिक बमों को डिफ्यूज कर उन्होंने झारखंड पुलिस का मान बढ़ाया है। असित कुमार मोदी इन दिनों रांची में प्रतिनियुक्त हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस जवानों को ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। पटना के एडवांस ट्रेनिंग स्कूल से पहला प्रशिक्षण हासिल करने के बाद उन्होंने विभिन्न राज्यों की पुलिस अकादमियों में ट्रेनिंग ली। फिर BSF और NSG के साथ ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें अमेरिका भेजा गया। इसके बाद उन्हें बमों को डिफ्यूज करने में महारत हासिल हुई और अब झारखंड पुलिस उनके काम पर गर्व करती है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में CRPF जवानों पर हमले के बाद जम्मू क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। वहीं भारत के अलग अलग राज्यों में रह रहे कश्मीरी मूल के लोगों और छात्रों में भी डर का माहौल है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कश्मीरी मूल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। राहत सामग्री से लदे अमरीकी सैन्य विमान वेनेजुएला की सीमा पर स्थित कोलंबिया के कुकुटा शहर पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहां वेनेजुएला के लोगों में बांटने के लिए दवाइयां और खाद्य सामग्री का भंडारण किया जा रहा है। नाइजीरिया में चुनाव आयोग के राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों को अंतिम समय में टालने का फैसला करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने देशवासियों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करने की अपील की है। यहां चुनावों को एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने यूरोपीय नेताओं से ईरान परमाणु समझौते से अलग होने की अपील की है। म्यूनिख सुरक्षा परिषद के समक्ष दिए भाषण में पेंस ने कहा है कि अमरीका सबसे पहले का मतलब अमरीका अकेले नहीं है। उन्होंने यूरोपीय देशों को भरोसा दिया कि सीरिया से अमरीकी सैनिकों के लौटने के बाद भी अमरीका इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। और कीनिया ने सोमालिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और सोमालियाई राजदूत से अपने देश लौटने के लिए कहा है। दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दाज समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।